میں اب آپ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ اب یہاں سے اس کا آغاز فرما رہے ہیں اور بات مسلسل ایک ہی چل رہی ہے اور وہ یہ کہ انسان ہی آخر اس کا پابند کیوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پچھلے باب میں فرشتوں اور جانوروں کی قوتوں کے بعد یہ بات ثابت کی تھی کہ انسان جس طرح بنایا گیا ہے خود اس کی بناوٹ اللہ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ اسے اچھے کاموں پر ثواب سے نوازا جائے اور برے کاموں پر سزا دی جائے. پھر اب اس باب میں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو تقدیر بنائی ہے یہ تقدیر خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان پر اللہ کی طرف سے کچھ احکامات ڈالے جاتے. اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ انسان سوچے کہ نباتات میں خدا کی طرف سے کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور حیوانات کے احوال کی طرف دعوت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کی نوع کیا ہے, اور پھر دو خصوصیات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان میں کون سی وہ دو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انسان میں باقی چیزوں سے امتیازات پیدا ہوتے ہیں. اور اس امتیاز کے شعبوں کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے شریعت ضروری ہے, اور پھر جو پانچ علم انسان کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں ان پانچ علوم کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. اور اگرچہ حجت اللہ کا ایک ایک باب یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنے الہامی اور قصبی علوم سے نوازا تھا, لیکن یہ تمام ابواب ایسے ہیں جن میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خالصتاً عقل کی باتیں انسانوں سے کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے حوالے کم اور انسان کی عام زندگی کے حوالے زیادہ دیتے ہیں. تو انسانوں کے بعد کہ انسان اس لیے اللہ کے احکامات کا پابند ہے کہ اس کی نوع کا تقاضا ہے کہ وہ نیکی کے کام کر کے خوش ہوتا ہے اور برائی کے کاموں سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے. جب اس کی فطرت صحیح طور پر قائم ہو تو اس کے بعد اب وہ دیکھیے عقلی انداز سے چلیں, اور یہی ہے حکمت کا انداز کہ حکیم جو ہوتا ہے حکمت سے بات کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک تدبیر کے ذریعے وہی چیز پہنچاتا ہے جو کسی بے تدبیر آدمی نے بات کرنی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچ سمجھ کے وہ بات کرتا ہے اور دوسرا آدمی ہے بغیر سوچے سمجھے لے کے لٹ مارتا ہے, اور نتیجہ یہ کہ اولاد ہے شاگرد ہیں کوئی بھی ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں مانتے. इस तरह समझ लीजिए कि कई एक मिसालें उसकी आपको मिलेंगी. मंसूर बादशाह ने ख्वाब देखा और उसने देखा कि सारे दांत टूट गए हैं. अब उसने दांतों के टूटने की बड़ी उसे वहशत हुई और उसने बुलाया किसी को कि ताबीर दो. तो लोगों ने हाजिर किया कि ताबीर में बहुत मुमताज हैं. तो उसने पूछा कि मेरे दांत ख्वाब में देखता हूं सब के सब टूट गए हैं. तो मुअव्वर ने ताबीर देने वाले ने कहा कि हजरत ये ख्वाब तो बड़ा खतरनाक है. इसका मतलब यह है कि आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे और फिर आप भी मर जाएंगे. उससे कहा अल्लाह ताला तुम्हारी जुबान बंद करे, निकलो यहां से. एक और बुजुर्ग लाए गए और ताबीर वो भी जानते थे, ताबीर ये भी जानता था. तो उन्होंने ताबीर सुन के चुप, ख्वाब सुन के चुप हो गए और कहने लगे अल्लाह मुबारक करे, बहुत अच्छा ख्वाब है. आपको बशारत दी गई है हजरत कि आपकी उम्र बहुत तवील होगी और इतनी तवील हो जाएगी कि सारे रिश्तेदार एक एक करके आपकी जिंदगी में चले जाएंगे, आप सब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगे और आखिर पे अमीरुल मोमिनीन जाना तो है ही आदमी ने, तो फिर आप भी चले जाएंगे, अल्लाह के सामने पहुंच जाएंगे. तो मंसूर हंस पड़ा, कहने लगा दोनों ने बात एक ही की है लेकिन अंदाज देखो, उसने कैसे कहा और इसने कैसे कहा. यही वो चीज है जो हिकमत को मुमताज करती है दूसरे इंसानों से. उसकी दूसरी मिसाल ऐसे समझें जैसे फुकाहा ने मना किया है कि किसी आदमी को मौत के वक्त कलमे की तलकीन ना की जाए. वो कहते हैं कि मौत उसकी जिस चीज पे वाकई होनी है वो होनी है अल्लाह की तरफ से है. अब मैयत को अगर बार बार कहेंगे कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो अपनी बीमारी शिद्दत तकलीफ पता नहीं किस हाल में है, चिढ़ जाए और कहे कलमा पढ़ लिया है या कोई ऐसा कुफर का जुमला मुंह से निकाल दे माज अल्लाह, तो फिर जो खड़े हुए होंगे वो तो बहुत से तमाशबीन भी होते हैं रिश्तेदारों में, वो ये कहेंगे कि जी तो कुफर का कलमा कहा है, पूछो मुफ्तियों से पता नहीं जनाजा भी होगा इसका कि नहीं होगा, क्या चीज है. फुकहा मना लिखते हैं, वो कहते हैं अगरचे हदीस में आया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस आदमी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा कोई जरूर बख्शा जाएगा. तो कहते हैं उसे डायरेक्ट कलमे की तलकीन ना करो, मुमकिन है कोई कुफर का जुमला बक दे. तो अगरचे उस वक्त का कुफर मोतबर नहीं है, सारी जिंदगी जिस ईमान पे रहा बस रहा, उस वक्त का कहना उसका मोतबर नहीं है. उसकी ताबीर करेंगे कि दर्द की शिद्दत की वजह से कह दिया, मायूसी की वजह से कह दिया, आलमे आखरत खुल गया था और इस इंसान ने जब जहन्नम को देखा तो है तो मोमिन ही मुसलमान ही लेकिन गुनाहगार था. उस आग को उस डर को देखकर इसने ऐसा जुमला कह दिया था, ये सब ताबीलात होंगी और उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा और उसके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा. लेकिन वो कहा कहते हैं इतनी बहस की जरूरत ही क्या है, उसे किसी तदबीर से कलमा पढ़ाओ. मसलन वो दर्द में है तो उसे ये कहा जाए कि बहुत दर्द है तकलीफ है, जरा कलमा पढ़िए अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा दर्द कम हो जाएगा. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तदाबीर बताते थे. आपने फरमाया जब तुम किसी शख्स के पास जाओ बीमार के पास तो उसे जिंदगी की उम्मीद दिलाओ, उसे सेहत की यानी उम्मीद दिलाओ कि अल्लाह मेहरबानी करेगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा. और आपने फरमाया तुम्हारे इस कहने से उसकी उम्र में न कमी होगी ना इजाफा होगा लेकिन मरीज का दिल अल्लाह के साथ मुतालिक हो जाएगा, दुआ करने लगेगा. अब कोई कहता है घबराहट हो रही है आप पर बहुत ज्यादा, अच्छा इसका हल मैं बताऊं, आप इस्तिगफार कीजिए कलमा पढ़िए. मरना तो उसने है ही लेकिन एक तदबीर के साथ उसे उसी मंजिल पर पहुंचा दिया जिस मंजिल पे कोई लट लेके पीछे पड़ जाता कि नहीं कलमा जरूर पढ़ो, तो उस पर भी पहुंचता था इस तरह भी लेकिन एक तदबीर के साथ. शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह जो कुछ फरमाना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि इंसान की एक तो हैयत ऐसी है कि उसकी हैयत तकाजा करती है बहीमियत और मलकूतियत दोनों औसाफ जो जमा है हर एक अपनी अपनी नौ का तकाजा करता है. फरिश्तों का तकद्दस इस बात के नौ का तकाजा, इसकी नौ तकाजा करती है कि मैं अच्छे काम करूं और मुझे सवाब मिले. जानवरपना जो इंसान में है तो तकाजा करता है कि वो जानवरों जैसी हरकतें करे और उसके बाद वो तौबा की तरफ आए और वो फिर अल्लाह से माफी मांगे और फिर उस दशा औकात ऐसी हरकत कर गुजरता है कि वो अपना उसका वजूद कहता है कि इससे तुम्हें जूते पड़ने चाहिए, इससे तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आदमी इतना शर्मिंदा होता है गुनाह के करने के बाद। अब शाह साहब अहमदुल्लाह अलैह ने अपनी इसी मुद्दा को साबित करने के लिए नई बात शुरू कर दी। इस बात में ये सातवां बाब उन्होंने कायम किया। उन्होंने कहा अच्छा देखो, तुम पूछते हो कि इंसान ही क्यों आकर अल्लाह की इबादत का पाबंद है, तो दूसरी तरफ ये भी देख लो, फरिश्तों और शैतान के इम्तिजाज कुव्वतों के, उसको छोड़ के इधर देखो, तकदीर भी तो आखिर कोई चीज है। ये उस सवाल का दूसरा जवाब दे दिया। अब तकदीर पे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बराहे रास्त ले आते कि अल्लाह ताला ने लिख दिया था, अल्लाह ने तय फरमा दिया था। उसकी बजाय शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत यहां जाहिर होती है कि उन्होंने इस कायनात की कुव्वतों पर गौर करके बात को शुरू कहां से किया, बात को पौधों से शुरू किया कि पौधों को पर गौर करो, अल्लाह की निशानियों पर गौर करो। इसके बाद फिर वो आ जाएंगे अच्छा हैवानात पर गौर करो। हैवानात पर जब आदमी गौर करेगा तो जहन बन जाएगा, फिर एकदम से इंसानों पर आ जाएंगे अच्छा इंसानों पर भी गौर कर लो। हालांकि ये दोनों अब्बाब शाह साहब रहमतुल्लाह ना बांधते तो कोई इतनी बड़ी बात ना होती, लेकिन उन्होंने इसमें मिसालें भी दे दी और अब्बाब भी तक एक इंसान का जहन बने कि खुदा की तकदीर भी तो कोई चीज है। अल्लाह ताला ने खजूर को जो खजूर बनाया है तो क्यों बनाया? आप कोई कहे कि खजूर जो थी ये माल्टे जितनी बड़ी क्यों नहीं हो गई, तो उससे पूछा जाए कि भाई फिर माल्टा खजूर जितना छोटा क्यों नहीं हो गया? ये तो ऐसी बहस है जिसका कोई भी जवाब नहीं। कहते हैं किताबों में लिखा है कि एक फलसफी था और वो गुजर रहा था कहीं, तो उसने बागात में देखा कि वो आलू बुखारा या कोई चीज दरख्त पे लगी हुई थी, गुजर गया और उसने कहा कि अच्छा हुआ कि ये चीज मैंने देख ली। और फिर कहने लगा कि ये भी अजीब बात है, अल्लाह ताला ने इतना ऊपर लगा दिया, अगर जमीन पे होता तो बच्चे भी खा लेते, अब बच्चों को मोहताज कर दिया खुदा ने कि कोई सीढ़ी लगाए फिर चढ़े फिर आलू बुखारे तोड़े। चलता के आगे तो एतराज खुट्टी में पड़ा हुआ होता है ना बात लोगों की, आगे जो देखा तो तरबूज का एक खेत था, तो तरबूज के खेत को देख कर फिर उसके दिल में एतराज हुआ। उसने कहा लो कितने तरबूज हैं फटे पड़े हैं और कितने खराब हैं, अब इन्हें अगर दरख्त पे लगा देते तो महफूज रहते, इन्हें भला जमीन पे क्यों लगा दिया। थोड़ा सा और आगे चला तो किसी दरख्त से फल गिरा और सर पे लगा, तो एक बुजुर्ग थे, अब उन्हें जाकर बयान किया और कहा हजरत तीन ख्याल आए, एक तो अल्लाह ताला ने ये क्या किया कि आलू बुखारे ऊपर लगा दिए तरबूज नीचे लगा दिए, और आगे जा रहा था तो मैं वहां से गुजरा और पता नहीं क्या फल था वो मेरे सर पे गिरा, तो मैं अपनी सोच में गुमता आ गया। तो कहने लगे कि अगर तरबूज भी अल्लाह ताला उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर दरख्तों पे लगा देते और आज वो तेरे सर पे गिरता तो फिर क्या हाल होता। तो उसकी हालत समझ गया मैं। तो ये चीज होती है कि इंसान में बाज़ औक़ात ये चीजें पैदा होती हैं और इंसान कहता है कि क्या चीज है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात का एतराज के जवाब में लिखते हैं कि गौर करना चाहिए कि तुम्हें जानना चाहिए कि अन्ना लिल्लाहि तआला आयातिन फी खल्क़िही, अल्लाह ताला की कुछ निशानियां उन चीजों में जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं। अल्लाह की मखलूक में निशानियां, अल्लाह ताला इसीलिए लोगों को बार बार ये दावत देता है कि लोग आए और खुदा की निशानियों को देखें। और यही हिकमत है इस बात की कि अल्लाह ताला हमेशा इंसानों को अकल के जरिए समझाता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुदा चाहता है कि लोगों से सिर्फ उतनी बात कहे जो लोगों की अकल में आए, लोगों की समझ में आए, वो कोई जबर और इन चीजों को नहीं करना चाहता। इसीलिए मोजज़ात ज्यादा नहीं दिखाए जाते कि मोजज़ा अगर आ जाए तो इंसान आजिज हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसको मानना जरूरी है, क्योंकि अगर मौजदा नहीं मानेगा तो उसके बाद खुदा का अजाब आ जाएगा। अकल की बात करता है खुदा लोगों से, इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि इन चीजों में आयात हैं, तुम इन चीजों पर गौर करो। एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला और एक जगह नहीं कई जगह पर लोगों ने आसमान और जमीन की तखलीक पर गौर नहीं किया आसमान कैसे बनाए जमीन कैसे बनाई ईमान वालों की जब बात आती है तो अल्लाह ताला तारीफ करते हैं अल्लाह फरमाते हैं यतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्ध और मेरे बंदे तो ऐसे हैं जो आसमानों के और जमीन के बनने पर इनकी पैदाइश पर गौर करते रहते हैं और फिर इन चीजों को देखते हैं और इनसे इबरत हासिल करते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलकता हाजा बातिला ऐ परवरदिगार ये सारी चीजें बेकार में नहीं बन गई अल्लाह ताला दावत देते हैं और फरमाते हैं आसमान की तरफ निगाह उठाओ हल तरा मिन फुतूर तुम कहीं देखते हो आसमान में कोई शिगाफ है कहीं से फट गया है जब ऐसे नहीं है और इतनी अच्छी चीज है तो फिर देखो हम कैसे पैदा करने वाले हैं बार बार कुरान दावत देता है इस बात की तरफ और जो लोग जेनेटिक्स का इल्म रखते हैं ये उनके लिए आयात अल्लाह कहता है अपनी तखलीक पे गौर करो तुम क्या थे तुम हमने तुम्हें कैसे पैदा किया और फिर आखिर में कहता है तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन क्या ही बरकत वाली खूब जात है वो जिसने सबसे अच्छी तखलीक फरमा दी तो वो अपनी आयात पर गौर करने के लिए लोगों को दावत देता है सूरह इनाम को देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उंजुरु इला समरे और दरख्तों को देखा करो फल कैसे पड़ते हैं और फिर उस फल का पकना देखो कि हम उसे कैसे पकाते हैं अब एक आदमी पानी को देखता है कि पानी बह रहा है अल्लाह ताला क्या कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि नुसूकुल मा इलल अर्दिल जुरुज और हम हैं जो पानी को चलाते हैं उस जमीन की तरफ जो जमीन खुश्क है बंजर जमीन की तरफ मैं पानी को चलाता हूं इसका मतलब ये हुआ कि पानी अपनी तखलीक में भी अल्लाह का मोहताज है और पानी जब बन गया तो उसके बाद पानी को करना क्या है ये भी अल्लाह का हुक्म है उसका मोहताज है उस पानी को खुदा जो खेत में ले जाता है ये भी अल्लाह का हुक्म है कि वो खेत में जाता है अल्लाह का अगर हुक्म ना हो तो पानी बर्फ बन जाए जम जाए अब क्या कोई आदमी कर सकता है तो अल्लाह ताला एक एक चीज पर बताता है कि जो कुछ तुम करते हो इससे तुम्हारा इख्तियार जो है वो बज़ाहिर है हकीकत में हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो है इसीलिए फुकहा ने अकीदे के बाब में बड़ी गहरी बात लिखी है वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि आलम असबाब को पैदा करके अब असबाब में तासीर अल्लाह ताला ने रख दी है लेकिन इस तासीर का जाहिर होना अब अल्लाह इससे फारिग हो गया तो कुफर करता है कहते हैं कुफर माज अल्लाह असबाब अल्लाह ने पैदा किए शिफा के असबाब में तासीर रख दी कि ये गोली ये दवा ये दरख्त ये फल खा लेगा इसका ये असर मुरतब हो जाएगा अब एक आदमी सोचता है कि इसका असर ये मुरतब होना है बस अल्लाह का इख्तियार था अल्लाह ने रख दिया इस तासीर को मुरतब होने में अब कोई खुदा का इख्तियार नहीं है ये कुफ्र है इसलिए कि दो आदमियों को एक ही मर्ज है डॉक्टर दोनों को दवाई देता है एक सेहतमंद हो जाता है दूसरा नहीं हो सकता वही चीज है इंसान दो खाते हैं एक आदमी उस लुकमे को खाता है उसके साथ कुछ और मसला हो जाता है वही उस दूसरा लुकमा खाता है दूसरा आदमी भी वही खाना खाता है और उसके लिए खून बन रहा होता है अच्छी चीजें बन रही होती हैं तो अल्लाह उस तासीर को मुरतब करते हुए भी खुदा का इख्तियार है चाहे तो उस खाने को सेहतमंद बना दे चाहे तो किसी और तरफ को कर दे उसको तो इसलिए इंसान जो है उनको कुरान दावत देता है कि निशानियां हैं अल्लाह की गौर करो हज़रत अबू दर्दा रजी अल्लाह उन्होंने बैठे हुए थे और एक किसान हल चला रहा था और अबू दर्दा रजी अल्लाह उन्होंने बहुत गौर करते थे यही वो गौर और फिक्र है जो बाद में सूफिया क्या आके मुराकबात बन गए सूफिया जो कहते हैं मुराकबात करो तो मुराकबात की असल यही है सहाबा किराम रजी अल्लाह उन्होंने ऐसी चीजें पाई जाती थी तो उस आदमी ने जो किसान बैल हल चला रहा था एक जानवर को मारा बैल को तो उस अबू दर्दा रजी अल्लाह उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि देखो इसे मार पड़ी है सोच है ना 100 आदमी ये मंजर देखें हर आदमी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है एक आदमी ने मंजर देखा और मुमकिन है वो बैल के की बजाय किसान के साथ हमदर्दी करे. एक आदमी ने मंजर देखा वो मुमकिन है बैल के साथ हमदर्दी करे कि किसान ऐसे ही जालिम होते हैं, देखो कैसे बेजुबान जानवरों को मार रहा है. एक तीसरे आदमी ने देखा और वो कहता है कि देखो ये जमीन की वजह से है कि जमीन में अच्छी तरह हल चलना चाहिए ताकि खेती बाड़ी ज्यादा पैदा हो, इसलिए जानवर को ये पाबंद किया गया. दस राय हो सकती है. हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु देखा और अपने शागिर्दों से कहा कि तुमने देखा है इसको मार पड़ी है और दूसरे बैल को उससे नहीं मारा. तो फिर हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे इसका मतलब यह है कि जो अपना काम करता रहता है उससे मारनी पड़ती, तो दोज़ख में वही लोग जाएंगे जो अपना काम नहीं करते. अब ये सोच का अंदाज है, एक चीज देखी और उससे उन्होंने कितना बड़ा नतीजा निकाला कि अच्छा इससे ये मतलब साबित होता है अल्लाह के साथ ताल्लुक था. इसलिए किताब सुन्नत बार बार दावत देती है लोगों को कि लोग उन नताइज पर गौर करें. शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की इन निशानियां जो हैं इनमें गौर करना चाहिए. खुदा ताला ने अपनी मखलूक में बहुत सी निशानियां रखी हैं जिनको देखकर देखने वाला उससे सही राह हासिल कर सकता है. इला अन्नल्लाह लहुल हुज्जतुल्लाह हुज्जतुल बालिगा, यहां तक कि उस इंसान को यह समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने ये जो दलील कायम की है वो बहुत मुकम्मल दलील है इस बात पर कि इंसान अल्लाह के हुक्म को संभालें, ले इबादी ही बिशराए और उसके बंदे शरीयतों पर अमल करें. फरमाते हैं कि जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की कायनात में जो निशानियां हैं गौर करने वाला जब इन पर गौर करता है तो उसे समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को शरीयत की जो ज़हमत दी है कि वो इस पर अमल करें तो इसके लिए खुदा के पास बहुत कामिल दलील मौजूद है. ज़हमत देना उर्दू मुहावरा है, ज़हमत देने का वो मतलब नहीं है जो आम आदमी के ज़हन में आता है कि खुदा ने इंसानों को कोई तकलीफ दी है. मतलब यह है कि इंसानों को जो पाबंद बनाया है उसके लिए अल्लाह के पास हुज्जतुल्लाहिल बालिगा अल्लाह के पास जबरदस्त दलील है. अब वो दलील क्या है, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस दलील को बताते हैं क्योंकि अल्लाह की सुन्नत और तरीका यही है जो पहले भी अर्ज किया कि वो आम इंसानों से जो बात करता है बस इस तरह एक सादा तबीयत का इंसान मान जाए. अब एक देहाती आदमी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मोटे मोटी चीजें बता देते हैं कि ये करो ये ना करो, इतने बारीक फलसफे में अब उसे समझाने कोई बैठ जाए वो आदमी नहीं समझ सकता. शरीयत इसीलिए लोगों को उतनी चीज का पाबंद करती है जितनी चीजें लोगों की दस्तरस में होती हैं, और फिर जब मर्तबा बढ़ जाता है तो शरीयत उन चीजों को इंसानों पर ज्यादा लागू कर देती है इसलिए कि उस इंसान का मर्तबा बढ़ गया. अब मसलन हज़रत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुहात मक्किया में एक जगह लिखा है कि उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि उन्हें जहन्नम दिखाई जाए, तो अपने मुतल्लिक कहते हैं कि फिर मुझे जहन्नम में उतारा गया, मैंने 5 दर्जे जहन्नम को देखा, पहले दर्जे में क्या हो रहा है दूसरी जगह क्या हो रहा है, तो मैंने 5 जगह देखी. अब उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फिर वापिस आया, मुझे बाहर लाया गया. अब जो हज़रत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है वो उनके हाल के साथ है. अब किसी देहाती आदमी से आप जाके पूछें कि इब्ने अरबी रहमतुल्लाह जहन्नम देखा था नहीं देखा था, उस बेचारे ने इब्ने अरबी का नाम भी नहीं सुना, उसे पता ही नहीं है, ना शरीयत उसे इस बात का पाबंद बनाती है कि तुम इतना पढ़ो इतना लिखो, ये चीजें मोटी मोटी चीजें ये हैं और ये नहीं. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग का तरीका भी यही था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को छोटी छोटी चीजें बता देते थे, ये करना है ये नहीं करना, और अखलाकियात पर जोर देते थे कि अखलाकियात के बनने की वजह से जो आमाल इंसान से सादिर होते हैं वो अल्लाह का हकीकी कुर्ब इंसान को दिलाते हैं. मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की तलकीन फरमाते थे. अब सब्र जिस इंसान में वाकई आ जाता है हकीकी माना में वो मुश्किल वक्त को अल्लाह के सहारे और भरोसे पे गुजार लेता है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई तदबीर फरमा देगा, अच्छाई पैदा हो जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी, इससे इंसान में हौसला पैदा होता है. अब इसकी वजह से जब सब्र बन जाएगा और सब्र इंसान करने लगेगा तो सर्दियों में वुजू करना भी उसके लिए आसान हो जाएगा कि कोई नहीं तकलीफ तो है लेकिन हर ताला शानू ने इसमें अजर भी रखा है इंसान बर्दाश्त कर लेता है अब किसी इंसान में सब्र का मादा ही नहीं है तो वो कहेगा ठंडा पानी इससे वुजू करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस तकलीफ पे सब्र कौन करेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात पर ज्यादा जोर देते थे ताकि उसकी वजह से जो पैदा होती है चीज वो इंसान में मलका पैदा होता है शाह साहब रहमतुल्लाह ने आगे चल के मलकात पर बहस की और बहुत उम्दा मुबाहिस में से एक बहस वो भी है एक इंसान को 100 मर्तबा नमाज की तलकीन कोई करता है दूसरा इंसान इससे मेहनत करता है कि उसे अल्लाह से ताल्लुक ऐसा पैदा हो जाए कि खुदा की नाफरमानी उसके लिए दुश्वार हो जाए जब ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा तो वो खुद बखुद नमाज पढ़ने लगेगा वो नमाज छोड़ेगा नहीं और अगर उससे तलकीन की जाए बार 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 अगरचे है ये भी बात कि तलकीन करनी चाहिए जैसे बच्चे हैं उनको आदत बनानी चाहिए नमाज की अब उससे खुदा के खौफ का तो इतना नहीं पता लेकिन जाहिर में उसे कायम करना भी जरूरी है लेकिन हकीकत में जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और उसे खुदा के साथ ताल्लुक की तालीम दी जाए अब वो नमाज छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता इसलिए कि अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा हो गया एक आदमी में बुख़ल है पैसा नहीं खर्च करता उस इंसान को कहना कि पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में दो ठीक है शरीयत से कहती है ज़कात अदा करो और दूसरी तरफ एक आदमी ये मेहनत करता है कि भाई इस इंसान में बुख़ल की जो आदत है इसको खत्म किया जाए और इस इंसान का दिमाग खुल जाए अल्लाह की राह में खर्च करने का इसे पता चले जब तक खर्च ना किया जाए कौमें नहीं बनती इदारे नहीं बनते अब जब आदमी की समझ में आ जाती है उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है वो सारी उम्र अल्लाह की राह में खर्च करता रहेगा तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात पर ज्यादा मेहनत कराते थे लोगों को बनिस्बत इसके कि वो बराह रास्त किसी अमल का हुक्म दें और ये मुतअद्दिद जगह अहदीस में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया ये किया ये किया ये सब चीजें मसलन हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और वो सहाबी जो रावी हैं इस हदीस के वो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में और आपने हदीस में अल्फाज किए हैं कि आपने कभी फरमाया कि अच्छा इसके पांव की जगह ठीक करो फिर फरमाया अच्छा इसके सर की जगह ठीक करो तो कब्र को ठीक करवाते रहे अंदर से क्यों करवाते रहे कहने को तो कब्र एक गढ़ा ही है ना फर्ज कर लो चारों कोने बराबर ना हुए तो क्या हो गया मैयत को लिटाना है सिलें रखनी है मिट्टी डाल के आ जाना है अंदर क्या मसला है आखिर के यहां से एक फुट कब्र इधर है या एक फुट उधर है उसकी टांगे हैं अगर उधर से थोड़ी भी जगह है तो टांगे आ गई ना अब चारों कोने जरूरत क्या थी इसकी वजह और है इस हदीस में आता है ये रिवायत अबू दाऊद वगैरह में हर जगह मिल जाएगी आपको कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे इसकी कब्र के पांव को ठीक करो इधर से ठीक करो इधर से ठीक करो वजह इसकी वो है जो तबकात इब्ने साद में आई तबकात इब्ने साद की आठवीं जिल्द में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र को देखा और आपने मैयत के रखने से पहले फरमाया कि इसकी सतह को बराबर करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने वाकयात हैं कब्रों के मुतालिक आप उनमें देखें बुनियादी तौर पर एक चीज नजर आएगी इस हदीस में बड़ी सराहत से आया है कि आपने फरमाया इसको ठीक करो कब्र की जमीन हमवार करो जब कब्र की जमीन बिल्कुल हमवार कर दी गई चारों कोने उसके बराबर हो गए आपने फरमाया अब मैयत को रखो मैयत को रखा गया तो आपने कहा जो कब्र का ठीक करना है लोगों इससे ना मैयत को कोई नफा पहुंचेगा ना नुकसान पहुंचेगा अब मैयत का क्या है खड्डे में फेंक आते हैं मैयतें जब होती हैं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कभी वबा फैल जाए कत्ले आम हो जाए ये जैसे होता है पाकिस्तान में कि 20 आदमी मर गए 50 आदमी मर गए तो इतनी कब्रें खोदने की कहां जगह होती है तो वो तो फिर खड्डे ही खोदे जाते हैं खड्डा खोदा और जिस तरह हुआ दफन कर दिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमेशा कब्र को ऐसे करो ऐसे करो जमीन हमवार आपने फरमाया देखो मैयत को ना इससे नफा होगा और ना नुकसान पहुंचेगा लेकिन तुम्हारा परवरदिगार ये कहता है कि जिस काम को भी करो खूबसूरती से करो घर बनाना है क्यों ना आदमी उस कमरे के कोने बराबर करे प्लस्तर करवाना है तो टेढ़े मेढ़े प्लस्तर के बजाय क्यों ना प्लस्तर ठीक हो कोई और चीज रखनी है क्यों ना उसे एक जगह درمیان में रखने की बजाय एक कोने में रख के खूबसूरत लगती है उस कोने में درمیان में रख के درمیان में खूबसूरत लगती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे उसमें वकार खूबसूरती उसको पेशे नजर रखते थे मना फरमा दिया फरमाया नमाज के लिए जब आते हो तो दौड़ा ना करो भागा ना करो फरमाया अलैकुम बिसकीना वल वकार पूरी इज्जत एहतराम से नमाज में आओ और फिर इस पे इतनी जबरदस्त बात फरमाई आपने कहा याद रखो जब तुम अपने घर से निकलते हो तो उस वक्त भी तुम अल्लाह की नजर में नमाजी में होते हो जब घर से निकला है तो नमाजी के लिए तो निकला है फरमाया सुकून से चलो वकार से चलो हर चीज के मुतलिक हंसते वो अंजिशा रजी अल्लाह अनु है वो कहते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था सफर में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पे सवार थे और अज़वाज मुत्तहरात भी साथ थी तो मैंने जब ऊंची ऊंची आवाज में अशआर पढ़ने शुरू किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा अंजिशा आराम से अशआर पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता देखो मेरे साथ शीशे भी हैं कि उन्हें ठेस ना लग जाए शीशे फरमाया औरतों को जो बड़े नाजुक मिजाज की होती हैं तुम जो अशआर पढ़ रहे हो इनकी वजह से उनके जज्बात भी उभरेंगे तो इन अशआर को पढ़ो लेकिन आहिस्ता आवाज से मना नहीं फरमाया लेकिन वकार हर जगह वकार इसी तरह कब्र के बारे में फरमा दिया कि कब्र की ये मिट्टी बराबर की जाए हमवार किया जाए उसे तुम्हारा परवरदिगार हर चीज में हुस्न को पसंद करता है ये शरीयत में एक हद तक मतलूब चीज है हत्ता के कलाम में भी हुस्न को पसंद करता है बात में भी हुस्न को पसंद करता है मिलने में भी इस चीज को पसंद करता है कि कोई आदमी कैसे मिलता है एक सहाबी रजी अल्लाह ने तो बिल्कुल आखिरी हद तक ले गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा सदका क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका बयान करते रहे हजरत सालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जो कुछ अल्लाह ने दिया है खर्च करो मतलब ये था कि अल्लाह ने इल्म दिया है ये खर्च करो सदका है पैसे दिए हैं खर्च करो उनका अल्लाह के रसूल ये भी ना हो आपने फिर फरमाया उनका ये भी ना हो ये भी ना हो ये भी ना हो जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे वो नफी करते रहे उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये भी ना हो आपने कहा आधी खजूर अल्लाह के रास्ते उनका अल्लाह के रसूल ये भी ना हो तो आपने फरमाया अच्छा फिर तुम्हें आखिरी बात बताऊं तुम जब भी किसी से मिलो तो हंसते हुए मिलना खुशी से मिलना मुस्कुराते हुए मिलना और ये भी तुम अपने भाई के साथ सदका कर रहे हो यानी भाई के साथ नेकी के सलूक कर रहे हो ये जो इतना आखिर तक ले गए हैं उसकी वजह यह है कि कौमों को आप देखें कौमी एतबार से लोगों के चेहरों पर जो खुशी होती है ताजगी होती है हंसते मुस्कुराते लोग होते हैं देख के जिंदगी की उमंग पैदा होती है और हर एक का चेहरा लटका हुआ हो हर एक का चेहरा मुरझाया हुआ हो हर एक के चेहरे पे फकर और फाके के और मुआशी असरात हों तो आदमी अच्छा खासा उस मुआशरे में बीमार हो जाता है कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है यार बात किससे करें यहाँ तो कोई आदमी नहीं है जो खुशी और हंसी से मिलता जुलता हो आप ये उसमें दो चीजों को देखें एक तो बच्चों को देखें जिनको जिम्मेदारियों का इतना नहीं होता ये बच्चे स्कूलों में जाएं हंसते खेलते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं हंसते खेलते वो एक अलग चीज है हमारे यहां ऐसे क्यों नहीं है इसलिए कि बच्चा सहमा हुआ जाता है उसे पता है कि सुबह जाकर स्कूल में मार पड़नी है तो वो जो तफक्कुरात है ना उसके उसकी हंसी को छीन लेते हैं घर वाले परवाह नहीं करते घर वालों को चाहिए था कि उसको कहते बेटे आप सोएं जल्दी इशा पढ़ते ही बस सो जाना है आप अपना अपना काम करना है इतना वक्त आपके काम का है इसको पूरा करें क्या स्कूल के वालों ने पढ़ाया है क्या लेके जाने बच्चा जब अपना काम पूरा किया हुआ है नींद पूरी है सुबह उठ के हंसता खेलता स्कूल चला जाएगा ये है उसका बचपना और बच्चे को पता है कि आज ड्रामा भी देखना है क्रिकेट भी देखना है ये चीज भी देखनी है ये भी देखनी है वो सारा वक्त अपना उसमें लगा देगा और नतीजा ये निकलेगा कि काम कर नहीं सकेगा आगे उस्ताद ने उसकी कोई नहीं सुननी और मार पड़नी है तो सहमा हुआ जाता है हजारों बच्चे इस चीज पे जाये हो जाते हैं कि इम्तिहान का खौफ इतना है और उस्ताद पहले ही कह देता है कि अगर तुम्हारे इम्तिहान में इतने नंबर ना आए तो मैं रेड पेंसिल से लिख दूंगा ये हो जाएगा तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे इतनी तबाही मचती है कि वो कहते हैं अच्छा फिर कर लो जो कुछ करना हमने नहीं पढ़ के देना ये सब क्या है कौमों में जो तरोताजगी होती है वो आप कभी उन बच्चों में देखें जिन बच्चों पे ये डर नहीं होता, स्कूल है, ग्राउंड है, खुले ग्राउंड है, एक एक स्कूल 20-20, 25-25, 50-50 कनाल में बना हुआ है, बच्चे पढ़ते भी हैं, खुश भी रहते हैं, जिम्मेदारियां नहीं होती, हंसता मुस्कुराता बच्चा जाता है, खुशी खुशी वापिस आता है, आंख खुलती है, उसे फौरन होती है कि मैं किसी तरह स्कूल पहुंचूं, किसी तरह जाके खेलूं, किसी तरह जाके टीचर से मिलूं, और जब उसे पता हो कि आगे ये होना है तो फिर वो कहता है किसी तरह जान छुड़ाओ। ये कौमों में इसी तरह मजमूई एतबार से एक तासर पैदा होता है। आप हिंदुस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, तो वहां पर लोगों के चेहरों पे आम तौर पर ऐसी रौनक नजर नहीं आती, ऐसी ताजगी नजर नहीं आती। मुआशी हालात हैं, ये वो चीजें हैं। हमारे यहाँ देख लें, आज से 50 साल पहले जो लोगों के चेहरों पे ताजगी थी, खुशी थी, हंसी मजाक एक दूसरे से मिलना, ये बातें थी, अब दिन ब दिन वो कम होती जा रही है। और वजह उसकी ये कि मुआशी मसाइल इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, अमन के मसाइल इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब इंसान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को गोया आखिरी बात बता दी। आपने फरमाया अच्छा भाई खुशी से मिला करो, ये भी तुम एक नेकी का काम कर रहे हो दूसरे भाई के साथ। अल्लाह को हर चीज में हुस्न पसंद है, अल्लाह को हर चीज में वकार पसंद है, अल्लाह ताला को हर चीज में ये पसंद है कि लोग अच्छे नजर आए अच्छी तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए एक आदमी के कपड़े मैले कुचैले देखे तो आपने उसे बुलाया और आपने फरमाया ये पैसे ले लो। उसके अल्लाह के रसूल मेरे पास काफी पैसे हैं, आपने फरमाया साबुन खरीदो, साफ कपड़े पहनो। मना फरमा दिया मैले कुचैले कपड़े पहनने से। एक बुजुर्ग है, उन्होंने हदीस की शरह में लिखा, उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था वो जाहिरी एतबार से फरमाया था, और मैंने आलिम कश्फ में देखा कि जो कपड़े धुल जाते हैं वो खुदा की तस्बीह बयान करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, और जो कपड़े मैले हो जाते हैं वो खुदा का जिक्र छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो इंतजार करते हैं कि अब धुलें। और फिर उन्होंने उसकी मिसाल दी, उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे इंसान का दिल गुनाहों से जब मैला हो जाता है तो अल्लाह की याद में कमी वाकई हो जाती है, और जब दिल धुल जाता है खुदा की जिक्र से याद से तो अल्लाह को याद करने लगता है। ये सब चीजें शरीयत की हिकमतों में से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में तशरीफ ले गए, फरमाया कब्र को इधर से ठीक करो उधर से ठीक करो। वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब तदफीन हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, तो एक आदमी मिला और उससे कहा अल्लाह के रसूल फलां औरत ने आपकी दावत की है, आप तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चल पड़े, खाने का वक्त भी हो गया था, बैठे। और सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हमें भी फरमाया खाओ, हम खाने लगे, लेकिन हमने गौर किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुकमा लिया था, जो बोटी मुंह में डाली, उसे दाएं बाएं घुमा रहे थे, निगल नहीं रहे थे। और आखिर आपने फरमाया कि मुझे लगता है कि ये जो गोश्त है, बकरी जो जबा की गई है, वो मालिक की इजाजत के बगैर जबा की गई। इरशाद फरमाया बुलाओ जबा किसने किया। वो औरत जो थी वो आई, खातून हाजिर हुई, कहने की अल्लाह के रसूल मुझे पता चला कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो बड़ी खुशी मुझे हुई, और मैंने सोचा कि जनाबे वाला तो इधर आएंगे ही, हमारे मोहल्ले से गुजरेंगे तो क्यों ना आपकी दावत की जाए। मैंने आदमी भेजा हमसायों के पास कि मुझे एक बकरी दे दो, मुझे पता था इन्होंने नई नई खरीदी है। तो जो घर वाली थी उसने कहा कि मेरे शौहर ने खरीदी थी और शौहर कहीं गए हुए। मैंने उधर आदमी भेजा कि शौहर से पूछ के आओ। उनके पास गए तो वो मिले नहीं उसे, वो नौकर वापस आया और वक्त था थोड़ा, तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि तुम मुझे दे दो। उससे कहा कोई बात नहीं, तुम जबा करो और पका लो, और वो आएंगे तो मैं उनसे मामला तय कर लूंगी, पैसे उन्हें दे देना। असल मालिक की इजाजत के बगैर वो बकरी जबा कर दी गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलक से वो गोश्त नहीं उतरा। जब ये सारी बात सामने आई तो आपने फरमाया जाओ और इस गोश्त को कैदियों को खिला दो। ये नहीं फरमाया हराम है, अगर हराम होता वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हराम को लोगों को खिलाते भी ना, क्योंकि किसी को हराम खिलाना भी तो गुनाह की बात है ना, हराम है। ये नहीं फरमाया कि जाय कर दो कुछ, कर दो फरमाया कैदियों को खिला दो। इसका मतलब ये है कि मालिक को पता नहीं चला और वो एक तरह से जबरन छीना हुआ जानवर या गोश्त आ गया, लेकिन वो एक हद तक उसकी मिल्कियत हो चुका था। तो जब मिल्कियत हो गया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्कियत में शुबा था ना, शौहर का गोश्त था वो, शौहर की बकरी थी, बीवी की नहीं थी, लेकिन बीवी ने इजाजत दे दी तो आम उर्फ में यही हुआ करता है, तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मद्देनजर रखा और फरमाया अच्छा इस तरह कर। ये क्या चीज हो गई? ये बात हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशिया के खाने के बारे में इतनी पाकीज़गी, ऐसी चीजें कि कतअन उसमें किसी किस्म का शुबा ना आए। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुदा ने जिन अहकामात को भेजा है ना, पूरी तरह कायनात में निशानियां हैं, अल्लाह ने अपने बंदों को इन शरीयतों का पाबंद बना दिया है और खुदा के पास जबरदस्त इस बारे में दलायल हैं। अल्लाह के दलायल में से क्या है? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फंतुरिल अशआर, आप इस बहस को अगर सुनना पढ़ना चाहते हैं तो आप गौर कीजिए अशजार पर, दरख्तों पर, और आप गौर कीजिए दरख्तों के जो पत्ते हैं उन पर, अजहार जो फूल हैं उन पर, वसमरात हुआ और उनके जो फल पड़ते हैं उन पर, वमाफी कुल्लु जालिक मिल कैफियात, और इससे जो कैफियात पैदा होती हैं, इन चीजों पर गौर कीजिए कि वो क्या होती हैं, कि इंसान उन चीजों को मसलन देखता है या उन फलों को इंसान चखता है वगैरह वगैरह, तो हर एक फल के लिए इनमें अल्लाह ताला ने खास शक्ल के पत्ते हर एक के अलग कर दिए और खास रंग के फूल और मजों के साथ अल्लाह ने इन फलों को बनाया है, और इन चीजों से पता चलता है कि इंसान मुख्तलिफ फलों में फर्क कर सकता है। शाह साहब रहमतुल्लाह के कहने का मतलब ये हुआ कि तुम कभी इस कायनात में गौर करो कि नबातात का क्या निजाम है। अब आ रहे हैं उस तरफ कि अल्लाह के हुक्मों को मानना ये इंसान की सृष्ट में दाखिल है, और पहली दलील उन्होंने शुरू किया है यहां से नबातात की, कहते हैं नबातात पे गौर करो। अब नबातात जो है कुरान बार बार उसकी तरफ लाता है, कुरान को देखें आप पढ़ें, अल्लाह ताला कमाल की बात फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फंजरू इला समरे, गौर किया करो ये फल जो दरख्तों पे पड़ते हैं, गौर किया करो इन फलों को हम पकाते कहते हैं। फिर कुरान मिसाल देता है कि एक आदमी था और उसके दो बाग थे, और फिर उसने ऐसे ऐसे किया और उसके बाग में फिर आग आई और उस आग ने जला दिया और ये चीजें हो गई। कुरान एक जगह जिक्र करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन खेतियों पर गौर करो हम इन्हें कैसे पकाते हैं, फंजरू और इन पर नजर किया करो, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इस पर गौर करो, वातू हक्कहू यौम हिसादे, जिस दिन तुम इन खेतियों को काटोगे अल्लाह का हिस्सा अलग कर देना। इतनी ताकीद आई है ज़रात के बारे में, हमारे यहां लोग गुनाहगार होते हैं मुफ्त में गुनाहगार होते हैं। गुनाह आदमी कोई करे माज़ अल्लाह तो चलो मजा ही सही, कुछ तो उसने हासिल किया, बगैर मजे के ये गुनाह है। जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इसमें अहकामुल कुरान में हदीस लाए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझसे कहा कि मेरे बंदों को कहो कि जमीनें आबाद करें और उसमें मेरे बंदों के लिए घर बनाएं। यानी अल्लाह इस बात से खुश होता है कि कोई प्लानिंग स्कीम कर दी जाए, कोई टाउनशिप कर दी जाए, लोगों को प्लाट दिए जाएं, लोगों को घर बना के दिए जाएं। जितनी ईमानदारी से वो काम करेगा अल्लाह से उतनी खुशी पाएगा, अल्लाह ताला उतना ही राजी होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ पर मेरी तरफ से नहीं। बड़े नुक्ते की बात यह है कि मतलब लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्हें देख देख के आदी हो गए थे ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते हैं, कोई वो जो जज्बा इताअत है उसको मजीद उजागर किया और फरमाया मेरी तरफ से जाके ना कहना, इन्हें कहो कि अल्लाह ने यह कहा है कि जो आदमी पौधे लगाएगा यानी बाग लगाएगा और उस पर सब्र करेगा, यानी उसमें आंधी आ सकती है, कुछ आ सकता है, तकालीफ है, परेशानियां, उस पर सब्र करेगा और अपने दरख्तों के पास वो खड़ा रहेगा ताकि निगरानी करे, तो उसे बताना अल्लाह ने ये कहा है, मेरी तरफ से ना कहना, अल्लाह ने ये कहा है कि जितना ज्यादा फल पड़ेगा बाग में अल्लाह उसको इतनी ज्यादा अजर देगा। जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान में एक जगह जमीन पर बहस की है, ये जो बे लज्जत का गुनाह है ना वो ये है, उसको देखने से मालूम होता है कि अगर सिर्फ 200 फुट भी आदमी के पास जमीन है, मसलन 10x20 का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके मुतालिक भी शरीयत कहती है कि अगर इस पे कोई चीज नहीं लगाई गई और उसका नफा किसी को नहीं हुआ, कयामत में पकड़ा जाएगा इस पे, हाथ लगा देता चलने फिरने के काम आ जाता, 10-20 फुट ही है ना, चंद कदम चल लेता, सब्जी लगा देता, सब्जी उस आदमी के अपने काम आ जाती, हमसायों के काम आ जाती, किसी और के चीज काम आ जाती। हमसाये का अच्छा होना खुदा के बहुत बड़े इनामात में से है कि किसी आदमी को हमसाया अच्छा मिल जाए। मोहम्मद इब्ने मैमून रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े मुहद्दिस थे, उनका जो हमसाया था उसने मकान बेचना था और उसने कहा, जो आता था कहता था कि मकान की कीमत 4000 है। लोग हैरान होते थे, वो कहते थे भाई आपका मकान 1500-2000 से ज्यादा का नहीं, ये 4000 किस चीज के मांगते हो। कहता था 2000 तो मकान की कीमत है और 2000 मोहम्मद इब्ने मैमून रहमतुल्लाह जैसा आदमी मेरा हमसाया है, ये उसकी कीमत, ये इतने अच्छे मेरे हमसाये हैं, तो 2000 उनके लिए दो, 2000 मेरे लिए दो, मेरे हमसाये इतने अच्छे हैं। तो मोहम्मद बिन मैमून रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो बड़े खुश हुए, कहने लगे सुभान अल्लाह, हमारे हमसाये इतने अच्छे हैं कि वो मेरे अखलाक पे, मेरी जात पे भरोसा करते हैं, मुझे इतना अच्छा हमसाया कहते हैं। तो उन्होंने चुपके से एक दिन जाके 4000 उसके हाथ पर रखे, फरमाया काम चलाओ अपना, मकान मत बेचो, मरते दम तक इकट्ठे ही रहेंगे, मुझे भी तुम्हारी जैसा हमसाया चाहिए। 4000 उसे दिया। ये चीजें एक दूसरे के साथ ताल्लुक की बात है। तो इतनी सी जमीन है, उस पे अगर वो सब्जी लगा देगा, उस सब्जी से अपने घर को चला लेगा, कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई चीज तो आएगी और ताजा सब्जी होगी, उससे सेहत पे जो फर्क पड़ेगा, फिर इसके साथ हमसाये को दे देगा, बेच देगा, कुछ करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें और बातें बहुत सी इरशाद सुनाई। बसन ये फरमाया कि अगर किसी आदमी ने बेरी का दरख्त काट दिया बगैर किसी वजह के, वजह हो सकती है खेत के दरमियान में कहीं आ गया, चारों तरफ साया पड़ रहा है, उसके 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 नीचे फसल ही नहीं हो सकती और 10 वजह हो सकती हैं, बगैर किसी शरी उजर के, फरमाया बेरी का दरख्त काट दिया, अल्लाह उसको क्यामत में गर्दन से पकड़ के उल्टा जहन्नम में फेंक देगा। इतनी सख्त बात इरशाद फरमाए। आप फरमाया लोगों को बताओ कि जो कुछ जमीन से उगेगा ये उनकी तरफ से सदका है। यहां तक फरमाया कि तुम फसल लगाओ, फल लगाओ, दरख्त लगाओ, सब्जी लगाओ और चोर उसमें से चोरी करके ले जाएगा, अल्लाह तुम्हें उसका भी अजर देगा। इसलिए कि माली नुकसान हो गया ना, चोर ने तो चोरी कर ली, और फरमाया परिंदे जब आएंगे उसमें से खाएंगे, अल्लाह उससे भी तुम्हें अजर देगा। अब परिंदों को कौन रोक सकता है, आदमी हजार कोशिश करे कुछ ना कुछ, तो ये सारी चीजें बताएंगे ताकि इंसान इन चीजों को जाने। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं आप गौर कीजिए इस पे कि दरख्तों के पत्ते मुख्तलिफ होते हैं, दरख्तों पर पड़ने वाले फल जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इन पर गौर कीजिए तो इनमें से जो चखी जाती हैं चीजें, ये चखना मुख्तलिफ होता है। आम का जायका अलग है, फलां फल का जायका अलग है, फलां का जायका अलग है, इतने ज्यादा। कुरान इसीलिए इन चीजों को कहता है, अल्लाह ताला ने गोश्त पर फलों को तरजीह दी है, इसीलिए कुरान में आया, अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत वाले जब आएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, वफवाकिह मिम्मा यतखय्यरून, और चुने हुए फल उनकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, बहुत उमदा। जन्नत में तो सारे ही फल अच्छे होंगे, लेकिन फरमाया बहुत उमदा छांट के फल हमारे फरिश्ते उनके सामने पेश करेंगे, वो चुनेंगे उन फलों को अहले जन्नत और उसको खाएंगे। इसीलिए हदीस में आता है पूछा गया कपड़े, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े भी जन्नत में दरख्तों से उगेंगे, कपड़े भी फूल खिलेगा और उसमें इंसानों के कपड़े होंगे। तो जाहिर है कि आसान सी बात है, यहाँ रुई पैदा होती है, रुई से हासिल करते हैं, रेशम पैदा होता है उससे, तो वो अल्लाह ताला ने रुई और रेशम की बजाय डायरेक्ट वहां कपड़े हैं, फूल फूटेगा और उससे इंसानों के कपड़े निकल आया करेंगे। तो ये फरमाया उस चीज में। अब चीजों का जायका मुख्तलिफ है। कुरान कहता है कि जब ये लोग जन्नत में जाएंगे, फवाकिह मिम्मा यतखय्यरून, सबसे पहले जो चीज है फल पेश किए जाएंगे इनके सामने, और फिर उसके बाद वला मतायरिन और उसके बाद अल्लाह ताला इन्हें गोश्त देगा उन परिंदों का जो इनकी उनकी खुशी होगी. अब सबसे मज़लूम परिंदा बेचारा ये मुर्गा, इसका गोश्त मिलेगा, पता नहीं किसी को ये पसंद होगा, किसी को किसी चीज का गोश्त पसंद होगा. कुरान ने फलों को गोश्त से भी पहले जिक्र किया है, इसलिए कि फल जो हैं वो गोश्त पे तरजीह में हासिल है, क्योंकि इंसान फलों के जरिए अपनी खुराक हासिल करे. इसीलिए जो सूफिया थे लबनान का, वो जो जबल कासियून था उस पे इतने फल लगते थे कि जिसको इबादत करनी होती थी वहां चला जाता था, इतने चश्मे थे, फल खाते रहते थे और उन चश्मों से पानी पीते रहते थे. हज़रत अली जवेरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कशफुल माजूब में, ये भी वहां गए थे, फरमाते मेरे शेख वहां थे और मैं गजनी से लाहौर बाद में तशरीफ लाए, गजनी से पहले वो ये वहां गए थे. तो कहने के मैं अपने शेख के पास गया तो मैं बहुत जवान था बिल्कुल और शेख मेरे बहुत बूढ़े हो गए थे, तो मैंने एक दिन खाने से पहले उन्हें हाथ धुलाए तो शेख ने मुझे कोई नसीहत की जो तरबियत के मुतालिक थी. तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्या मुसीबत है इन बुड्ढों की, हाथ ही हर वक्त धुलाते रहो, इनके खाने से पहले खाने के बाद खिदमत में इनकी लगे रहो. तो शेख ने मुझे देखा और बगैर मेरे कुछ कहे ये फरमाया कि जो तरबियत होती है ना वो इसी तरीके से होती है, मतलब ये है कि जो कुछ कर रहे हो ये तरबियत ही का हिस्सा है. फरमाते थे हमारे शेख का इंतकाल हो गया और हम लबनान के उस पहाड़ में बैठे थे, कोई काम नहीं था वहां सिवाय इसके हम इंसान बने और फल खाएं वहां से और पानी पिए और दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें. तो जब उनका इंतकाल हुआ तो इतनी गुर्बत थी कि कफन के लिए कपड़ा नहीं था. तो एक सूफी जो नया नया आया था उसने, शेख कहते हैं कि अपनी गुदड़ी उतार के दी, नई नई गुदड़ी थी, जगह जगह से उससे पैबंद लगाए हुए थे तो वो सारी पैबंद लगी गुदड़ी चादर उतार के दी गोया बड़ा एहसान किया, तो हमारे शेख को उसमें लिपटा के दफन कर दिया. अगले दिन फजर के बाद हम बैठे हुए थे, एक आदमी आया और उसकी वही चादर गुदड़ी उसने ऐसे आकर फेंकी जैसे हमारे मुंह पे मारी हो और कहने लगा कि ये रखो अपनी चीज, और अल्लाह के दोस्त किसी का एहसान नहीं लिया करते. ये हजरत ने लिखा है कशफुल माजूब में, वो जो कफन वहां पहना के आए थे वो कफन गोया वापिस आ गया. ये चीजें होती हैं जब आदमी आलिम मकान और जमान में सफर करता है तो ये चीजें आ जाती हैं. शाबलुल्लाह रहमतुल्लाह रे ये खुद कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद में मुझे अपने दो बाल इनायत फरमाए, और दो बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुझे दिए तो मैं सोया हुआ था, ख्वाब में देख रहा था, और जब मैं उठा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बाल मेरे हाथ पे हथेली पे मौजूद थे. ये चीजें हुआ करती हैं, लेकिन इनके समझने के लिए बहुत गहरा इल्म चाहिए, वरना ये हर आदमी के बस की बात होती है. अली अजवेरी रहमतुल्लाह ये लिखा है फलों के मुतल्लिक के वहां फल बड़े अच्छे अच्छे मिलते थे, तो ये चीज है. अल्लाह ताला कुरान में बार बार फलों का जिक्र करता है इस चीज को. तो शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं दरख्त बताते हैं, उनके पत्ते बताते हैं और फल का जायका बताता है. ये चीजें कितनी मुख्तलिफ हैं, ये अल्लाह के होने की निशानियों में से एक ये है. और फिर उसके बाद कहते हैं वहाजी ही कुल्लाहा, और ये तमाम की तमाम चीजें जो हम बता रहे हैं तुम्हें ये अपनी सूरतों शक्लों के साथ लिपटी हुई खुदा की तरफ से आई है. कज़ाउल्लाह ताला, अल्लाह ताला का ये फैसला है मे अंतकूना हाजिल मादत नखलतन मसलन, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया कि वो खजूर को पैदा करता है, तो खजूर की जो शक्ल है ये भी अल्लाह ही की तरफ से आती है. खजूर की जो भी शक्ल बने अल्लाह की तरफ से है. ये खजूर पैदा कैसे हुई, हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम में आता है कि बात इरशाद फरमाई, आपने कहा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जो मिट्टी बच गई थी अल्लाह ने उससे खजूर का दरख्त बनवा दिया, फरिश्तों ने बना दिया. तो आपने फरमाया जो खजूर जो पड़ती है इन दरख्तों में, फइन्ना हाज़ी अम्मतुकुम, ये तो तुम्हारी फूफी है, इस फूफी की इज्जत किया करो. मतलब ये था कि ये तुम्हारे बाप की जो मिट्टी थी उससे बचा हुआ ये पौधा लगाया गया है, تو اس میں کھجور کے ساتھ عظمت یا تعلق اس کی بھی دلیل بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا اور مدینہ منورہ میں کثرت سے پیدا ہوتی تھی. لیکن کسی بھی درخت کا پھل کوئی بھی درخت کسی نے لگا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اللہ تعالی جنت میں اسے ایسا درخت دیں گے, درخت چلا یا نہیں چلا یہ بعد کی بات ہے, اس نے اپنی طرف سے درخت لگا دیا, فرمایا جنت میں تمہیں ایسا درخت ملے گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں سے گزرے اور درخت اور باغ اور یہ چیزیں بہت خوش ہوئے, ہرے بھرے باغات سے دیکھ کے بہت خوش ہوئے, اس لیے کہ اس سے انسانوں کا رزق وابستہ ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی آیات رکھی ہیں. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھجور جو اللہ نے پیدا کی ہے تو کھجور اپنی صورت کے ساتھ ایسے ہی آئی ہے. تب کوئی آدمی اگر یہ سوال کرے کہ کھجور جو ہے اس کی صورت ایسے کیوں ہے تو بیکار بات ہے. اب پھر سوال یہ ہر ایک چیز پہ پیدا ہو سکتا ہے, انسان پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایسی صورت کیوں ہے, بندر کی ایسی صورت کیوں ہے, خرگوش کی ایسی صورت کیوں ہے, مالٹے کی ایسی صورت کیوں, کوئی بھی چیز ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کا مادہ بھی پیدا کیا ہے چیز کا اور اس کو اس کی صورت کے ساتھ بھیجا ہے, تو لہٰذا یہ سوال ہی بیکار ہے کہ کسی چیز کی خاص یہ مخصوص صورت کیوں ہے, دوسری صورت کیوں نہیں ہوگی. تو دوسری صورت بھی ہو سکتی تھی, لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا کہ اب اس کی یہ صورت کیوں ہے. فرض کر لیجئے کہ کھجور اگر تربوز کے برابر ہوتی تو سوال تو پھر بھی وہی رہتا نا, یہ تربوز کی صورت میں کیوں ہے, یہ کھجور چھوٹی صورت میں کیوں نہیں ہے. بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے اس صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اس میں فرشتوں کے اوصاف بھی رکھے ہیں اور شیاطین کے اثرات بھی رکھے ہیں, یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ برابر کام کرتی ہیں. تو اس سے نتیجہ وہ اگلی بحث میں انشاءاللہ آئندہ کریں گے.